الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर हम अपने जल्दार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातहुम के सिलसिले दुरूस उमूर खानदारी में हुस्न इंतज़ाम में से पढ़ रहे हैं। टॉपिक चल रहा है रिश्तेदारियाँ निभाना। तो उसमें सबसे पहले जो एक औरत की शादीशुदा जिंदगी के अंदर सबसे अहम जो रिश्तेदारी होती है वो उसके खाविंद के साथ होती है, ताल्लुक उसका खाविंद के साथ होता है। तो चूंकि ये जो सारे सिलसिला बयानात हैं ये एक अजवाजी ताल्लुक से ही ज्यादा अजवाजी ताल्लुकात से ही इसका ज्यादा ताल्लुक है, इस वजह से खाविंद से ताल्लुक ही को सबसे ज्यादा अहमियत हजरत ने यहाँ पर दी है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे आखिरी क्लास में कम्युनिकेशन के ऊपर ना, यही टॉपिक चल रहा था, यानी खाविंद के साथ जो बातचीत है, इजहार मुद्दा को बेहतर बनाए वगैरह। तो एक मिनट, पेज शेयर किया है, खाविंद की राय का एहतराम करें। हाँ, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, खाविंद की राय का एहतराम करें, पेज नंबर 132 132 के ऊपर। तो उसमें हमने ये बात करी थी कि अगर वो किसी ऐसे मामले में अपनी राय दे जो कि आपका एरिया है, आपकी उसके अंदर ज़्यादा समझ है, तो भी उसकी राय को बिल्कुल ही रिजेक्ट ना कर दें और उसको कोई उल्टा किस्म का, तैखा किस्म का जवाब ना दे दें, या अंग्रेजी के अंदर उसको शटअप वगैरह ना कह दें कि तुम्हें क्या पता, हु आर यू, तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले, आपको तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। इस किस्म का जवाब उसको इवन उन मामलात के अंदर भी ना दें कि जो कि आपके इलाके हैं, आपके एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के इंतजाम वगैरह हैं, या किचन के इंतजाम वगैरह हैं, या आपकी मैके से मुतालिक मामलात हैं। ये भी एक बहुत अहम बात है, पिछली क्लास में ये बात जहन में नहीं आई थी कि औरत के मैके से मुतालिक जो मामलात हैं, तो उसमें अक्सर औरतें ये गलती करती हैं कि खाविंद अगर कुछ कह दिया ना, तो वो बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स, बहुत ही खराब तरीके से उसको जवाब देती हैं कि भाई आपको क्या पता, आप कौन होते हैं, आप तो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सही, अब इससे जो है वो अब वो आपको यही जवाब दे कि अगर आप उसके खानदान के बारे में कोई अपना राय मशवरा दें और वो भी आपको ऐसे ही जवाब दे, तो फिर आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये एक बड़ी एक क्वालिटी होती है इंसान के अंदर कि जिसको के एम्पथी भी कहते हैं ना, एम्पथी अंग्रेजी में कहते हैं, कि ट्राइंग टू बी इन समवन एल्सेस शूज। ठीक है, ट्राइंग टू बी इन समवन एल्सेस शूज, नॉट इन द सेंस के उस जैसा बनने की कोशिश करें, ये इसका मतलब नहीं होता। बोले इसका मतलब ये होता है कि किसी सिचुएशन के अंदर जो है ना, वो ये सोचे कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मेरे ऊपर क्या गुजर रहा होता, या मैं उसकी जगह पर होती तो मुझे ये बात कैसे लगती। ठीक है ना, तो एम्पथी का ये भी तो एक मफहूम बनता है ना। ठीक है, खाली ये तो नहीं बनता कि कोई गरीब और भूखा और बेघर इंसान है तो उसके बारे में जो है वो आप एहसास कर रही हैं कि भाई उसको कैसी उसकी जिंदगी गुजर रही होगी, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो उस सोचें कि अगर मैं उसकी जगह होती, कि मेरे सर पे छतनी होती, तो मैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही होती। आमतौर पे एम्पैथी का यही मतलब लिया जाता है। ठीक है, कि कोई बहुत ही मुसीबत में है, इंसान ये सोचे कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मेरे ऊपर क्या गुजर रही होती, तो मैं भी लोगों से तवक्को करता कि वो मेरी मदद करें। तो अब वो भी तो मदद के का मुस्ताहिक है, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, ठीक है। लेकिन एम्पैथी को हम मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकते कि हम दूसरों से जो तवक्कोआत रखते हैं वही, ये भी सोच लें कि भाई वो भी हमसे ही तवक्को रखते हैं, ठीक है। वो भी तो हमसे ही तवक्को रखते हैं कि हम उल्टा जवाब ना दिया करें, हम टेढ़ा जवाब ना दिया करें, हम उल्टी सीधी शटअप ना कर दिया करें, ठीक है। जिस तरह हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि हमें शटअप ना कर दिया जाए, उसी तरह वो हमसे तवक्को रखते हैं कि उनको शटअप ना कर दिया जाए, ठीक है। तो एम्पैथी जो है ये अच्छी रिलेशनशिप्स के लिए इंतहाई अहम चीज है, हमें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए अपने अंदर, और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप मुझे ये सिफत अता फरमा दें, ठीक है। तो खाविंद की राय का एहतराम करें, चाहे वो आपके मैके के बारे में आपको राय दे रहा हो, चाहे किचन के बारे में राय दे रहा हो, चाहे घर की मैनेजमेंट के बारे में राय दे रहा हो, लेकिन इससे आगे बढ़कर क्या कि खुसूसन ऐसे मामले में जो कि उसका एरिया है, राइट, जो उसका एरिया है, बाहर के मामलात हैं, तो उसमें अगर वो आपको कुछ करने को कह रहा है या कुछ ना करने के लिए कह रहा है, तो उसमें भी उसकी राय को अहमियत नहीं देंगी, ठीक है। तो उसमें फिर बताया था कि बाहर के मामलात में खुसूसन पर्दा, हया, ठीक है, औरत का अपने आप को जो है वो बचा के रखना दूसरे मर्दों से, दूर रखना दूसरे मर्दों से, तो इसमें अगर खावंद कह रहा है कि नहीं आप नहीं जाए लोगों के सामने, आप ऐसी जगह पर मत जाए, आप ऐसी जगह पर जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज है, अब आप लोगों को बुरी लगेगी तो लगे, मुझे क्या, जैसे जिम जाना, बड़ा औरतों को होता है कि जी जिम जाकर के एक्सरसाइज करेंगी, घर में नहीं कर सकते एक्सरसाइज ना, जिम जाके एक्सरसाइज करेंगी। तो भाई अगर खाविंद मना कर रहा है कि जिम जाके आप नहीं एक्सरसाइज करें, क्योंकि जिम्स जो होते हैं ये बिल्कुल पब्लिक एरिया होते हैं, ठीक है, अगर इवन विमेन ओनली जिम भी है, अगर विमेन ओनली जिम भी है, ठीक है, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि इतने छोटे छोटे कैमरास जो हैं वो बड़ी आसानी से कहीं पे जो है वो प्लान किए जा सकते हैं, कैमरास, ठीक है, वीडियो कैमरास बहुत आसानी से कहीं भी लैंड किए जा सकते हैं। तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जहां पे बेशक विमेन ओनली जिम है, लेकिन वहां पे इस तरह की हरकत, भाई आपको क्या जरूरत है जिम जाकर के एक्सरसाइज करने की, जिस चीज की शरीयत के अंदर जरूरत तस्लीम की गई है ना, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे सफर करके जाना होता है तो वहां पर आपको होटल में रहना पड़ता है, ठीक है, तो होटल भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहां पर भी कोई कैमरा लगा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम सफर करके कहीं जाए ही नहीं, मक्का मुकरमा भी ना जाए, मक्का मुकरमा में फरिश्ते तो नहीं रहते, मदीना मुनव्वरा में फरिश्ते तो नहीं रहते, तो होटल मदीना मुनव्वरा में जाकर के आप ठहरेंगी तो मदीना मुनव्वरा के होटल के अंदर भी तो कोई वीडियो कैमरा लगा सकता है, लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में तो बहुत बहुत जो है वो बड़े बड़े गुनाहों की खबरें आती रहती हैं, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा से, आजकल तो बहुत बुरा हाल है, राइट। वहां पे फरिश्ते तो नहीं रहते कि हरम में हैं तो बस फरिश्ते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो सफर है वहां पे जो जाकर के आप रह रही हैं, तो ये एक जरूरत का सफर कहलाएगा, ठीक है। जिम जाकर के एक्सरसाइज करना ये जरूरत का सफर नहीं कहलाएगा एक औरत के लिए, ये जरूरत की चीज नहीं कहलाएगी एक औरत के लिए। बना ली अपनी जरूरत तो जरूरत तो कोई कुछ भी बना ले, लेकिन शरीयत के अंदर तो इसकी इजाजत नहीं है कि आप जिम जाकर के एक्सरसाइज करें पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो अब वैसी जगह पे जाकर के तो भाई आपने अपने आप को एक्सपोज किया है ना, अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ गई है, ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था बुरा लगे तो लगे, ठीक है, अल्लाह के निजाम के खिलाफ गई है, तो अब वहां पर अल्लाह की हिफाजत नहीं है आपके लिए, वहां पर अल्लाह की हिफाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत तो मशरूत है, अल्लाह की हिफाजत अल्लाह के निजाम को फॉलो करने के साथ मशरूत है, कंडीशनल है, ठीक है। हरमैन शरीफ़ैन गई हैं वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ आपने नहीं किया है, ठीक है ना। अगर जाहिर है शरी सफर के तकाजों के मुताबिक आप सफर करके वहां पे गई हैं, मदीना मुनव्वरा की जियारत के लिए गई हैं, मक्का मुकरमा के अंदर उमरा करने के लिए गई हैं, तो ये अल्लाह के निजाम के मुताबिक है। अब चूंकि अल्लाह के निजाम के मुताबिक ये सफर है, या इवन अपने फैमिली के साथ आप कहीं घूमने फिरने के लिए सफर करते, वो भी अल्लाह के निजाम के मुताबिक है। अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए सफर करती हैं, वो भी अल्लाह के निजाम के मुताबिक है, तो उसमें भी अल्लाह की हिफाजत होगी, उसमें भी अल्लाह की हिफाजत होगी, ठीक है। लेकिन जो चीज अल्लाह के निजाम के खिलाफ आप कर रही हैं, उसमें अल्लाह की हिफाजत नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर तो फिर होगा, अल्लाह ताला की हिफाजत नहीं है, तो फिर तो मसले होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो अगर शौर कह रहा है कि नहीं आप मत जाएं ऐसी जगहों पर, जो है वो आजकल लोग कैमरे लगाते हैं और इस तरह की खबरें आती रहती भी हैं, खबरें आई हैं इस तरह की, ठीक है। तो अब उसकी बात को मान लें, उसकी बात को मान लें, क्योंकि उसको पता है कि लोग कैसी कैसी गंदी और गलीज हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की हिफाजत जहां पर होती है ना, वहीं पर इंसान बच सकता है, वरना इन गलीज और गंदे लोगों से कोई चीज नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता। तो पिछले हफ्ते फिर जो क्लास हुई थी, उसके अंदर फिर डॉक्टरों की भी मिसाल दी थी, क्योंकि डॉक्टर्स को लोग जो है ना, पता नहीं फरिश्ता समझते हैं, क्योंकि वो नाउज बिल्ला वो जान बचाते हैं, राइट। डॉक्टर्स जान बचाते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह जान नहीं बचाता, डॉक्टर जान बचाते हैं। तो क्योंकि हमारा गुमान डॉक्टरों के बारे में ये बन गया है कि डॉक्टर जान बचाते हैं, तो अब जाहिर है जान बचाने वाला तो फरिश्ता ही बनेगा ना फिर, तो डॉक्टरों को पता नहीं क्या समझ कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से समझाया था कि नहीं, डॉक्टर्स तो एक्सेप्शंस तो हर जगह होती है, ला माशाल्लाह, लेकिन वैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं, ये तो इनके हाथ में इख्तियार होता है मरीज के साथ जो चाहे करें। तो अब ये तो कोई, यानी इनके पास तो फिर कोई वो नहीं होती है ना, रुकावट नहीं होती है ना इनके सामने, इनके सामने तो कोई रुकावट नहीं होती है फिर, ठीक है। तो ऐसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड प्रोफेशनल और कैरियर रखने वाले, और जब ये इतने गंदे और गलीज किस्म की हरकतें करते हैं, तो फिर आप दूसरे मर्दों से क्या तवक्को रखती हैं कि वो आपकी हया और पाकदामनी की हिफाजत करते हैं। वो बड़ा जो है वो जो कुरान मजीद के अंदर क्या है, आपकी हिजाब की क्लास के अंदर डेफिनेटली ये आयत भी जिक्र हुई होगी, अगर आपके मौलाना भाई मौजूद हैं तो वो हमारी मदद कर सकती हैं इसमें। क्या है कि म्यू वराए हिजाबिन वाली जो आयत है सूरह अहज़ाब की है ना, ये सूरह सूरह अहज़ाब की, कि जिसके दिल में फी कुलूबिहिम मरद, राइट। तो ऐसे लुचदार आवाज में बात ना करो कि जिसके दिल में मर्ज होगा तो वो जो है ना फिर तमा करेगा और वो कितना बनेगा, राइट। तो फी कुलूबिहिम मरद अल्लाह ताला ने रखा ना कि ये कॉज है कि तुम जो है वो अपनी बात को जो है वो लुचदान मत बनाओ, बल्कि करख्त लहजे में बात करो। हमने कहां से ये गुमान करके रखा हुआ है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो लोग सड़कों पे फिरते हैं और दफ्तरों में होते हैं और मार्केटों में होते हैं, उनके दिलों के अंदर मर्ज नहीं होता है? कहां से आई है भाई ये, कौन लेकर के आया ये कि उनके दिलों में मर्ज नहीं होता? इतना अच्छा गुमान रखना है तो अपने शौहर के साथ भी नहीं रखती, इतना ही अच्छा गुमान रखना है इंसानों के बारे में तो अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रखती? उनके साथ तो बड़ा बदगुमानी चलती है हर वक्त, और जो गैर लोग हैं उनके साथ बड़ी अच्छी गुमानी की, कि इनके दिलों में तो मर्ज नहीं होता, इनसे तो स्वीट लैंग्वेज करूंगी, स्वीट टॉक करूंगी, इनको तो दिल में कोई मर्ज नहीं होगा, ये तो कुछ नहीं करेंगे, ना उनको मुझसे कोई फितना है ना मुझे उनसे कोई फितना है, ठीक है। तो शौहर जब मना कर रहा है कि मत करें आप इस तरीके से, तो उसके सर पे जो है ना वो ढोल मत बजाया करें, बजाया करें, ठीक है। और उसकी बात का एहतराम किया करें, उसकी बात को मान लिया करें, ठीक है, क्योंकि वो उसका एरिया है और उसको पता है कि लोग कितने गंदे हैं, राइट, लोग कितने गंदे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बात अब भूलेगी नहीं कम से कम, सही है। तो खाविंद की राय का एहतराम करें, ये पढ़ने के बाद आगे चलते हैं कि बात मुनासिब वक्त पर करें कि ब्रिंग अप इश्यूज एट द राइट टाइम, कि मसले को सही वक्त पर उठाएं, यानी रेलेवेंट वक्त के ऊपर मसले को उठाएं। अगर कोई बात करनी भी है तो उसको मुनासिब वक्त पर करें। कई औरतें बच्चों के सामने बात छेड़ देंगी, लड़ना शुरू कर देंगी, बोलना शुरू कर देंगी, ठीक है भाई। बच्चों के सामने जब आप इस तरीके से करेंगे ना, तो ये मत समझें कि आप शौहर को सुना रही हैं तो बच्चों की नजर में खाली शौहर की इज्जत खराब होगी। जब उसके ऊपर गुस्सा आता है ना, तो दिल यही चाहता है कि उसकी इज्जत खराब हो जाए, तो बच्चों के सामने उसकी इज्जत खराब करती हैं। ये मत समझें कि खाली उसकी इज्जत खराब हो रही है, आपकी भी इज्जत खराब हो रही है, बल्कि शायद आपकी ज्यादा इज्जत खराब हो रही है, ठीक है। तो बच्चों के सामने जो झगड़ा लड़ाई करते हैं ना, तो जो इनिशिएट करते हैं ना, उसकी इज्जत ज्यादा खराब होती है, और जो रिस्पॉन्स करता है तो उसकी इज्जत भी खराब होती है, लेकिन उसके मुकाबले में कम। तो अपनी इज्जत जब खराब करेंगी तो फिर अगले बंदे से, अपनी औलाद से क्यों फिर तवक्को करती हैं कि वो आपकी बात मानेगी, आपको जो है वो रिस्पेक्ट देगी, और आपको जो है वो बड़े मोहब्बत करेगी आपके साथ। अब वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, बल्कि अक्सर औलादें तो फिर अपने वालदैन से नफरत करती हैं फिर उसके बाद, राइट, नफरत करती हैं। वो मजबूरन तो अदब तमीज कर रही होती हैं जब तक उनकी जरूरत होती है, उस वक्त तक तो वो कर रही होती हैं, लेकिन फिर बाद में बस ऐसे ही ऊपर ऊपर का और होता है मामला, ठीक है। अजीब वो गरीब किस्म के हालात हैं, पता नहीं हमारी अकल जो है वो कहाँ चली गई है, ऐसी हरकतें करते हैं और सोचते नहीं है कि इसका क्या असर होने वाला है। बड़ी होंगी मेरी औलादें, बड़ी होंगी तो फिर क्या क्या होगा, फिर मेरे साथ क्या करेंगी वो, मुझे फिर उसके बाद निकालेंगे अपने घर से बाहर, जिस तरह आजकल जो है वो घर से बाहर जो माँ बाप को निकाला हुआ है, तो वो सारी बुराई तो औलादों की समझी जाती है ना, कि घर से माँ बाप को निकाल दिया, कितने नाहंजार औलाद है, कितनी बुरी औलाद है, माँ बाप को जो है वो ओल्ड पीपल्स होम के अंदर फेंक दिया। ये नहीं देखते कि माँ बाप ने औलाद के साथ क्या किया था, ये नहीं देखते कि माँ बाप ने औलाद के साथ क्या किया था, जो औलाद ऐसी बनी कि अब जो है वो माँ बाप को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तुमने क्या क्या किया था औलाद के साथ, तुमने कैसी परवरिश करी थी उसकी, तो सारा कसूर जो है ना, सारा मलबा, सारा नजला जो है ना, वो औलाद पे उतरता है। बेशक उसका कसूर तो है, ये नहीं कह रहे कि उसका कोई कसूर नहीं है, बेशक उसका कसूर है, क्योंकि जब कोई बालिग हो जाता है तो अब उसके ऊपर शरीयत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही और गलत को सीखे, ठीक है, और वो बुराई का बदला बुराई से देने की बजाय बुराई का बदला अच्छाई से देना सीखे। तो औलाद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माँ बाप ने उसके साथ बुरा भी किया हो तो उसको फिर भी इजाजत नहीं है कि वो माँ बाप के साथ बुरा करे, ठीक है। औलाद को बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है कि वो माँ बाप को बुरा रिटर्न करे, ठीक है। बहुत सारी अच्छाइयां माँ बाप की हैं, चाहे ना भी हो फिर भी वो माँ बाप के साथ बुरा नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप की बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया होता है औलाद के लिए, अगरचे के बहुत सारे गलत काम भी किए होते हैं। तो औलाद तो बुराई में जवाब दे ही नहीं सकती अपने माँ बाप को, लेकिन हमारा दीन ये तो नहीं सिखाता ना, या हमारा दीन का मतलब क्या, यानी जो सही निजाम है वो ये तो नहीं सिखाता, क्योंकि हमारा दीन मींस जो निजाम सही है, जो सही निजाम है वो ये तो नहीं सिखाता कि उसको देखो कि उसने जो है वो गलत काम किया, या उसने ऐसा किया, या उसने वैसा किया। ये पूरा का पूरा दीन क्या है, पूरा का पूरा दीन ये है मैंने क्या किया। ये दीन ये नहीं है जैसे हमारे पास आते हैं ना मैसेजेस, क्या इस्लाम ये कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा करें, क्या इस्लाम ये कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा करें, क्या इस्लाम ये कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा करें, तुम्हें पता भी है इस्लाम क्या कहता है, राइट, तुम्हें पता भी है इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि ये देखते रहो कि वो मेरे साथ क्या करें, इस्लाम तो कहता है ये देखो कि तुम किसी के साथ क्या करते हो, राइट। इस्लाम तो ये है इस्लाम कि ये देखो कि तुम किसी के साथ क्या कर रहे हो, वो किताब में पढ़ के आ जाते हैं, इस्लाम ये कहता है कि मेरा ये हक है, इस्लाम ये कहता है कि मेरा ये हक है। नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि मेरा ये हक है, इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, इस्लाम ये कहता है। ठीक है ना, ये है दीन, ये है इस्लाम। ठीक है, तो अब ये देखना कि औलाद ने जो है वो माँ बाप के साथ बुरा किया हो। भाई माँ बाप क्यों नहीं देखते कि हमने क्या किया औलाद के साथ? माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, माँ बाप दीन को सीखें, तरीके को सीखें, और औलाद को उसके मुताबिक चलाने की कोशिश करें, परवरिश करने की कोशिश करें। अब उसके बाद भी अगर औलाद बुरा करे तो उनका और उनके परवरदिगार का मामला है। ठीक है, तो कई औरतें या कई मर्द भी, जाहिर है यहाँ पे औरतों की क्लास है, इस वजह से औरतों की बात हो रही है, वरना ये सारी चीजें मर्द, सारी चीजें तो खैर नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें मर्दों के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन वो तो दूसरा है ना, यहाँ पर तो मर्द मौजूद नहीं है ना, तो यहाँ पर तो अपनी बात करनी है ना। तो कई औरतें बच्चों के सामने बात छेड़ देंगी, लड़ना शुरू कर देंगी, बोलना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो ये गलत मौका है बात करने का। ठीक है, या खाविन जल्दी में है, कहीं जाना चाहता है, या ऐसी कोई सूरत हाल है, तो बेवक्त की जो बातचीत होती है वो उल्टा नुकसान देती है, वो खाविन को गुस्सा दिला देती है। ठीक है, अब वो अगर कमजोर है फॉर वॉट एवर रीजन, घर दामाद है इस वजह से वो कमजोर है, या जो है वो उसकी आवाज कम निकलती है, आपकी आवाज ज्यादा निकलती है इस वजह से वो कमजोर है, या वो हाथ उठाने वाला नहीं है इस वजह से वो कमजोर है, राइट, या वो फिजिकली कमजोर है, हाथ उठाए भी तो आपका हाथ ज्यादा भारी होता है उसके ऊपर, तो कमजोर होने की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। फिजिकली कमजोर है, या उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने ऐसे नहीं करी कि वो हाथ उठाए किसी के ऊपर, इस वजह से वो कमजोर है, या चीखना चिल्लाना उसको आता नहीं है, उसकी आदत नहीं है चीखने चिल्लाने की, इस वजह से वो कमजोर है, या मजबूरन कमजोर है कि वो आपके अब्बा पे डिपेंड करता है, इस वजह से वो कमजोर है, राइट, या उसकी जॉब खत्म हो गई है और आप जॉब करती हैं, इस वजह से वो कमजोर है, कि आप कमा के लाती हैं वो कमा के नहीं ला सकता, इस वजह से वो कमजोर है। तो कमजोरी की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो अगर वो कमजोर है तो गुस्सा तो उसको फिर भी आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर, उसको कीना कहते हैं, तो वो कीना करेगा आपके साथ फिर। ठीक है, तो आप रहे फिर इस कीने वाले रिलेशनशिप के अंदर, आपकी मर्जी है, तो भाई गुस्सा तो उसको आएगा। अगर बेवक्त की बात करेंगी, जिस वक्त जो है वो उसको कोई और जिम्मेदारी पड़ी हुई है, कोई और उसको काम करना है, उस वक्त आप बात करेंगी तो उससे नुकसान होगा, खामिद को गुस्सा आएगा। अब अगर वो कमजोर नहीं है तो फिर वो अपनी गुस्सा दिखाएगा भी, ठीक है ना, हाथ उठाना आता है उसको, हाथ उठाएगा, चीखना चिल्लाना उसको आपसे ज्यादा आता है, वो आपके बच्चे से चिल्लाएगा, राइट, या कोई और इस किस्म की हरकत करेगा। तो ये तो एक रिलेशनशिप के अंदर ना होने वाली चीज है ना, तो उसको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार करें। सबर है नहीं तो सीखें, सबर करना नहीं आता तो करना सीखना पड़ता है। अच्छा वक्त हो, खाविन जब सुनने के मूड में हो, आपके पास हो, आप उस वक्त बात करें और सही अंदाज से बात करें। ठीक है, अच्छा एक चीज सुन लें, ठीक है, किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर, बात ना समझ में आई हो, वैसे तो समझ में आ भी जाए तो इंसान भूल जाता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया है ताकि हम कुछ भूल गए हैं तो उसकी तकरार कर लें सुन करके, और तकरार क्लासेस का भी अल्लाह ताला ने अब तो इंतजाम कर दिया है, तो चाहिए कि इन तकरार क्लासेस का हिस्सा बने, इसमें खवातीन मिल करके दर्स को जो है वो आपस में खुद ही तकरार करती हैं, खुद ही इसको नोट्स वगैरह भी अपने फायदे के लिए बनाती हैं, अल्लाह तआला उन्हें बेहतरीन ज़्यादा खैर अता फरमाए, उनको यकीनन फायदा भी इससे होता है, लोग बताते भी हैं कि कितना फर्क पड़ा, पहले सुनते थे उसके बाद सब कुछ भूल जाते थे, अमल की तौफीक ही नहीं मिलती थी, अब जब से तकरार करनी शुरू करी है तो याद भी होता है, याद भी रह जाती हैं चीजें और समझ में भी ज्यादा आ जाती हैं चीजें। अल-इल्मु यज़ीदु बित-तकरार, तो बात मुनासिब वक्त पर करें। अगला पॉइंट है कि कि अपनी गलती को तस्लीम करें, अपनी गलती को तस्लीम करें, ठीक है ना। ये तो यानी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ये तो सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है गलती को तस्लीम करना, ठीक है। तहज्जुदें पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, उम्रे करना इतना मुश्किल काम नहीं है, और इवन 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 यानी मर्दों की बात है लेकिन जिहाद पे भी चले जाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना गलती तस्लीम करना मुश्किल काम है, ठीक है। जब ये कहते हैं ना, वो इंडिया में तो और भी ज्यादा ये मशहूर है कि सर कटाना आसान है, सर झुकाना बड़ा मुश्किल काम है, राइट। सर कटाना बड़ा आसान काम है रिलेटिवली स्पीकिंग, सर कटाना आसान काम है, सर झुकाना मुश्किल काम है। क्यों? इसलिए कि सर झुकाने का मतलब है गलती तस्लीम कर, और सर कटाना ये बगैर गलती तस्लीम किए हुए भी इंसान कर सकता है, ठीक है। इसलिए कि बहुत सारे जो है ना वो जोश में आकर के सर तो कटा लेते हैं लेकिन सर झुकता नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने सर झुकाया है ना वो बगैर सर कटाए अफजल बन गए, राइट। जिन्होंने सर झुकाया वो सर कटाए बगैर ही अफजल बन गए और अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो गए, ठीक है। तो सर झुकाना, अपनी गलती को तस्लीम करना, ये डेफिनेटली मुश्किल काम है, लेकिन जो मेहनत करता है इसके ऊपर यानी अल्लाह से मांगता है कि अल्लाह आप मुझे दीदे कसूर अता फरमा दीजिए, राइट, आप मुझे जो है गलती तस्लीम करने की सलाहियत अता फरमा दीजिए, अल्लाह ताला उसको अता फरमा देते हैं। हमारे लिए मुश्किल है ना, अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं है, मतलब गलती तस्लीम करना अल्लाह के लिए नऊज बिल्ला, अल्लाह ताला गलती करेंगे तो तस्लीम करेंगे ना, अल्लाह तो गलती करते ही नहीं है। हमें सिखला देना, हमें ये सलाहियत अता फरमा देना कि हम अपनी गलती तस्लीम कर लें, ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह से मांगते हैं, नहीं मांगते तो अब मांग लें, ठीक है। तो बातचीत के दौरान अगर मालूम हो कि आप गलती पर हैं तो उसको एडमिट कर लें, तस्लीम कर लें। यानी अक्सर तो अंदाजा हो जाता है लेकिन जब दिमाग पे गुस्सा सवार हुआ होता है ना तो उस वक्त तो दिमाग फंक्शन ही, जो गुस्से का जो मर्ज है ना ये रूहानी मर्ज है, और ये बड़े रूहानी मर्जों में से एक मर्ज है, क्योंकि रूहानी अमराज जो होते हैं वो कुछ तो बहुत सिवियर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लेस सिवियर होते हैं। जिस तरह जिस्मानी अमराज में कैंसर और हेपेटाइटिस सी और पता नहीं और कौन कौन से हैं वो इंतहाई मोहलिक किस्म के होते हैं ना, लेकिन जिस्मानी अमराज और भी बहुत सारे होते हैं जो कि मोहलिक नहीं होते हैं, हलाक कर देने वाले नहीं होते हैं। उसी तरीके से रूहानी अमराज में तीन रूहानी अमराज जो हैं ये मोहलिक हैं, डेडली, ठीक है। एक तो जिसको शहवत कहा जाता है, एक्सट्रीम दर्जे की शरीयत की बाउंड्रीज से तजावज करने वाली जो शहवत होती है ना वो है मोहलिक मर्ज, दूसरा गुस्सा है और तीसरा तकब्बुर है, ठीक है। शहवत, गुस्सा और तकब्बुर। तो जो इंसान भी इनका शिकार होता है तो बाकी रूहानी अमराज तो फिर खुद ही आ जाते हैं उसके अंदर, और गुनाह जो है फिर उसकी वजह से, क्योंकि रूहानी अमराज का मकसद यह है कि अब आपसे अच्छे काम नहीं होते बल्कि बुरे काम होते हैं, यानी गुनाह सरजद होते हैं, ये होता है रूहानी अमराज का की रियलिटी। तो गुस्सा एक ऐसा रूहानी मर्ज है कि जो इस रूहानी मर्ज का शिकार होता है तो अब उसकी जो अकल है ना वो काम नहीं कर रही, ठीक है, उसको बात समझ में नहीं आ रही होती, उसको हत्ता कि उसके कान भी बंद हो जाते हैं, उसके कान के अंदर चीज दाखिल भी नहीं हो रही होती है, ठीक है। हत्ता के जो और ज्यादा गुस्से के मर्ज का शिकार होते हैं उनकी आंखों के सामने भी एक ब्लर्ड विजन हो जाता है, उनको नजर भी नहीं आ रहा होता सही तरीके से जिस वक्त उनके ऊपर गुस्सा सवार होता है, ठीक है। तकब्बुर में भी गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा असल गुस्सा नहीं होता, जो तकब्बुर का शिकार होता है ना, जो तकब्बुर की रूहानी बीमारी वाला इंसान, तो उसको भी गुस्सा आता है लेकिन चूंकि ये उसकी असल रूहानी बीमारी नहीं है इस वजह से उसके गुस्से की हालत में ऐसा सब कुछ नहीं होता कि उसके कान बंद हो जाए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, उसका दिमाग जो है वो गर्म हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका असल मसला तकब्बुर है, गुस्सा नहीं है उसका असल मसला। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका असल मसला ही गुस्सा होता है, असल मसला ही गुस्सा होता है। वो जब गुस्से में आते हैं ना, तो उनको फिर सही गलत की तमीज खत्म हो जाती है बस। ठीक है, तो वो तो एक दूसरा मसला है। लेकिन यहां पर जो बात है ना, यहां पर जो अपनी गलती को तस्लीम करने वाला जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये असल में गुस्से वाला टॉपिक नहीं है। ये इसका ताल्लुक है तकब्बुर के साथ, क्योंकि गलती तस्लीम ना करना ये तकब्बुर की निशानी है। ठीक है, तो तकब्बुर वाला जो इंसान होता है ना, ये आमतौर पर ये मफलूज नहीं होता, ये जहनी तौर पर मफलूज नहीं होता। इसके पास बड़ा इल्म होता है, इसको सही गलत का पता होता है। ठीक है, तो जब इसकी किसी से लड़ाई होती है ना, तो इसको सही गलत का पता होता है, क्योंकि ये तो तकब्बुर का मरीज है ना, ये गुस्से का मरीज को थोड़ी है, ये तो तकब्बुर का मरीज है। इसको तो पता है कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलती कर रही हूं। ठीक है, तो यही समझाया जा रहा है कि जब आपको पता है ना कि आप गलती पर हैं, एडमिट कर लें उसको, ठीक है, मान लें उसको, तस्लीम कर लें उसको। तस्लीम करने में अजमत होती है, ठीक है, तस्लीम करने में अजमत होती है, इसमें बुराई नहीं होती। देखें, तकब्बुर का जो मरीज होता है ना, वो गलती तस्लीम नहीं करता। वो क्यों गलती तस्लीम नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझता है। किबर, तकब्बुर का लफ्ज कहां से निकला? किबर से। और किबर का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, वो अपने आप को बड़ा समझता है और वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो किसी वो छोटा हो जाए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि वो छोटा हो जाए, क्योंकि वो तो बड़ा है। वो अपनी बड़ाई को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो वो ये समझता है कि अगर मैंने गलती तस्लीम कर ली तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा, राइट? लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये उसको शैतान ने धोखा दिया हुआ है कि अगर वो गलती तस्लीम कर लेगा तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो शैतान ये कहता है कि तुमने गलत, अपने आप को गलत मान लिया तो तुम छोटे हो जाओगे। और शैतान का काउंटर पार्ट कौन होता है, जल्दी से बताएं? शैतान का जो मुतबादिल तो नहीं, क्या कहेंगे उसको, एडवर्सरी, काउंटर पार्ट, शैतान का दुश्मन, शैतान का दुश्मन नफ्स होता है। अल्लाह रहम करे आप लोगों को जिन्होंने नफ्स जवाब दिया है। तो शैतान का दुश्मन जो होता है ना, वो शेख होता है, शेख। ठीक है, ये सब सब सही जवाब दिए। ठीक है, शेख होता है शैतान का दुश्मन। तो शेख क्या समझा रहा है, शेख क्या समझा रहा है? तस्लीम करने में अजमत होती है। तुम जिस बड़ाई के मुतलाशी हो ना, तुम जिस अजमत के फिक्रमंद हो कि मेरी अजमत कहीं छोटी ना पड़ जाए, तो भाई अजमत जो है वो गलती तस्लीम करने में है। ये शेख बताता है। नबी अलैहिस्सलाम सबसे बड़े शेख, सहाबा कराम के शेख थे, उन्होंने सहाबा कराम को ये बात समझाई, सहाबा ने मान ली। उसी तरह हमारे शेख भी हमें ये बात समझा रहे हैं, काश के हम भी मान लें कि गलती तस्लीम करने में अजमत होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, तुम्हारी अजमत कहीं जाएगी नहीं, यू विल नॉट लूज योर अजमत, बल्कि गलती तस्लीम करने से तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। तो यही तो तुम्हें चाहिए था। ठीक है, तो तुम शैतान की बात क्यों मानते हो? सारा मसला ये है कि शैतान की बात मानते हो, शेख की बात नहीं मानते, राइट? शैतान तुम्हें कहता है कि मान लेने में जो है वो तुम छोटे बन जाओगे, तुमने उसकी बात मान ली। और शेख कहता है कि मान लेने में तुम बड़े बन जाओगे, तुम शेख की बात नहीं मानते। ठीक है, तो ये सारा मसला होता है, शेख की बात नहीं मानते, शैतान की बात मानते हैं। तो शेख तो कह रहे हैं तस्लीम करने में अजमत होती है, इसमें बुराई नहीं होती। ये कभी भी ना करें कि अपनी गलती को आप महसूस भी कर लें और मानने से रुकी रहें। ठीक है, देखें जो मुशरिकीन और काफरीन है ना, ठीक है, तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक अजीब बात फरमाते हैं। ठीक है, कुरान की आयत, फिर वही बात की भैया आप, वो वक्त गुजर गया जिसमें कुरान मजीद हिफ्ज कर लेना चाहिए था बचपन का, वो तो वो गुजर गया। अब कुरान मजीद हिफ्ज नहीं है, तो जो आप में से कोई हाफिज है वो शायद मदद फरमा दें। अल्लाह ताला ना इन मुशरिकीन और काफिरीन के बारे में एक बात फरमाते हैं, इस किस्म की अल्फाज होते हैं कुरान मजीद में कि इस जा अहुमुल अहुमुल इल्म, कि जब इनके पास इल्म आ गया तब इन्होंने इनकार किया। ठीक है, जब इनके पास इल्म आ गया था फिर इन्होंने बात क्यों नहीं मानी, फिर इन्होंने क्यों इनकार किया। ठीक है, तो अल्लाह ताला यही करते हैं कि अल्लाह ताला ना पहले इल्म पहुंचाते हैं। देखिए, इल्म जो है ना, ये कोई गाड़ी नहीं है कि वो खुद चल के आ गई, इल्म कोई आदमी नहीं है कि वो खुद चल के आ गया, इल्म तो एक इनटेंजिबल किस्म की एक सलाहियत है ना, ये अल्लाह ताला देते हैं। तो अल्लाह ताला पहले किसी के पास इल्म पहुंचाते हैं और फिर ये देखते हैं कि अब ये इस इल्म के ऊपर अमल करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर इसको ये इल्म पहुंच गया कि ये गलती पर है, तस्लीम करता है कि नहीं करता? अगर तस्लीम कर लिया तो ये मानने वाला कहलाएगा, और अगर तस्लीम नहीं किया तो ये इनकार करने वाला कहलाएगा, जिसको काफिर कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब आप किसी के साथ झगड़ रही हैं, अपनी शौहर के साथ झगड़ रही हैं, लेकिन आपको एहसास हो गया, यानी आपके पास अल्लाह ताला ने इल्म पहुंचा दिया कि गलती तो आपकी थी, ठीक है ना? अब देखें, अल्लाह ताला देखेंगे, लेकिन ये एहसास आपको कहां से मिला? ये अल्लाह से मिला एहसास, अल्लाह ने पहुंचाया ये एहसास कि आप गलती पर हैं। अब अल्लाह देख रही हैं कि मैंने एहसास तो पहुंचा दिया इस तक, मैंने तो इस तक इल्म पहुंचा दिया इसकी गलती का, अब ये मानती है कि नहीं मानती? ठीक है, तो अगर आप मानने से रुकी रहेंगी ना, तो फिर यू फेल्ड, आप अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई इस आजमाइश में फेल हो गई। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि तकब्बुर और गुस्सा दोनों एक शख्स में हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसका, तो इतना तो, लेकिन तकब्बुर और गुस्सा दोनों एक शख्स में वैसे तो हो सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है डोमिनेंट। ठीक है, तो डोमिनेंट इनमें से एक होगी, या तो गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, या जो है ना वो तकब्बुर बहुत ज्यादा होगा, और गुस्सा कम होगा तकब्बुर जो है वो, या गुस्सा कम होगा या तकब्बुर कम होगा। तो डोमिनेंट जो है ना वो यूजुअली एक ही चीज होती है, एक ही बीमारी डोमिनेंट होती है। ठीक है, जो कि छाई हुई होती है, बाकी जो है ना उसके तहत होती है। ठीक है, लेकिन तकब्बुर वाला शख्स जो है ना, ये इस तरह से इसको देखें, जैसे पहले समझाया भी था इस बात को थोड़ी देर पहले साजिद ने, कि जो तकब्बुर वाला शख्स होता है ना, ये तकब्बुर में जो मुब्तला होते हैं ना, ये उसके पास कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। ठीक है, जैसे माल होगा तो माल की वजह से तकब्बुर में मुब्तला हुआ ना। ठीक है, या इल्म होगा तो इल्म की वजह से तकब्बुर में मुब्तला हो। ठीक है, तो तकब्बुर वाला इंसान जो होता है ना, ये अच्छा खासा बासलाहियत इंसान होता है। ठीक है, अब माल भी है तो माल भी तो अब सलाहियतों की वजह से ही उसने कमाया है ना, या अगर बाप की तरफ से विरसे में उसको माल मिला भी है, तो अब उसने माल को संभाल के भी तो रखा हुआ है ना, तो इसके लिए सलाहियतों की जरूरत होती है ना। ठीक है, तो ये जो तकब्बुर वाला इंसान होता है, ये सलाहियतों वाला इंसान होता है, जबकि जो गुस्से का मरीज होता है ना, ये अच्छा खासा मफलूज किस्म का इंसान। ठीक है, अच्छा खासा मफलूज किस्म का इंसान होता है। तो इस वजह से अगर तकब्बुर का मरीज है डोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली, तो फिर इसका गुस्सा जो है ना वो इसके तहत होगा। ठीक है, और अगर गुस्से का मरीज है तो फिर तकब्बुर जो है ना वो इसका प्राइमरी मसला नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये बात हुई थी और अभी भी एक्चुअली यही बात दूसरे अंदाज में कही थी, कि जो मुतकब्बिर होता है ना, तो उसका जो गुस्सा होता है वो उसके काबू में होता है। ठीक है, और उसकी एक मिसाल भी आप लोगों को बहुत पहले की क्लास में मुझे याद है कि बात हुई थी कि मुतकब्बिर को जब गुस्सा आता है ना, तो ये बड़ा कंट्रोल्ड गुस्सा होता है। ठीक है ना, उसकी आप बेहतरीन मिसाल देख सकती हैं अपने सामने, कभी आपके सामने ऐसे शख्स का, या अपना जाति भी, आप अपने आप को भी गिरेबान में जाकर के भी तो इंसान अपने आप को देख सकता है ना भाई। तो अगर तकब्बुर का मसला है ना आपका, तो फिर क्या होगा कि उसी वक्त जिस वक्त के आप किसी एक शख्स पे गुस्सा कर रही होंगी ना, उसी वक्त दूसरे शख्स के ऊपर आप गुस्सा नहीं कर रही होंगी। ठीक है, क्यों? इसलिए कि वो आपको बुरा नहीं लग रहा, ये आपको बुरा लग रहा है। उसने आपको क्या कहते हैं वो नहीं कि कन्फ्रंट नहीं किया, जबकि इसने आपको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करने वाले के ऊपर आप गुस्सा कर रही हैं, और जिसने आपको कन्फ्रंट नहीं किया उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं कर रही हैं। क्यों भाई? इसलिए कि गुस्सा आपके कंट्रोल में है, जिस पे चाहती हैं करती हैं, जिस पे चाहती हैं नहीं करती हैं। क्योंकि आपका असल मसला तकब्बुर है, आपका असल मसला गुस्सा नहीं है। लेकिन जिसका असल मसला गुस्सा होता है ना, अब जब उसको गुस्सा आता है ना, अब कोई भी नहीं बचता उससे, चाहे किसी ने कन्फ्रंट किया है, चाहे किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया है, कोई भी सेफ नहीं होता उससे। उसको किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती। क्यों? इसलिए कि इसका असल मसला गुस्सा है, और गुस्से ने इसके सेंसेस को मफलूज कर दिया है। अब इसको तो किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही, चाहे कोई दोस्त क्यों ना, उसकी भी बात उसको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, एक बहुत बड़ा फर्क है तकब्बुर में और गुस्से में। तो बहरहाल यहां पर जो बात हो रही है, यहां तो तकब्बुर की बात हो रही है कि अपनी गलती को तस्लीम कर लें। जब आप अपनी गलती को खुद नहीं तस्लीम करेंगी, तो आपकी बात का उसके ऊपर भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर कभी कोई गलती हो जाए, तो उसको तस्लीम करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका अपना फायदा है, नहीं करेंगी इस पे अमल तो आपका अपना नुकसान होगा। दूसरे बंदे का नुकसान हो ना हो उसका मसला है, आपका मसला तो आपका नुकसान है, आपका अपना नुकसान होगा। सारी समझने की बातें हैं, जो मान लेता है उसमें फायदा हो जाता है, जो नहीं तो उसको फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमा दे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कहते हैं, आगे फरमाते हैं, खाविंद की बात दूसरे लोगों से ना करें। ठीक है, क्या मतलब? कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि अल मजालिसु बिल अमाना, कि मजलिस के अंदर जो ऐसी बात हो ना कि जिसको के शुरकाए मजलिस अपनी प्राइवेट या पर्सनल चीज समझते हो, तो अब उस मजलिस के बाहर किसी से भी उसका जिक्र ना करें। ये है इस हदीस मुबारक का मतलब, अल मजालिसु बिल अमाना। ठीक है, तो ये तो किसी भी मजलिस के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर मजलिस में कोई ऐसी बात हुई है जिससे किसी को नुकसान पहुंचने का खदशा, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, उस तीसरे बंदे जो कि मजलिस में मौजूद नहीं था, उसकी खैरख्वाही के लिए, उसको बचाने के लिए आप उसको ये बात बता सकते हैं। ठीक है, नुकसान से बचाना इसका मकसद, नुकसान फैलाना इसका मकसद ना। ठीक है, तो मजालिस बिल अमाना, तो ये चीज तो खाविंद के साथ और भी ज्यादा अप्लाई होती है एक बीवी की जिंदगी के अंदर। तो भाई तीसरा पॉइंट ये है कि टॉक टू योर हस्बैंड, नॉट अबाउट हिम टू द पीपल। ठीक है, अपने हस्बैंड से बात करें, उसके बारे में लोगों से बात ना करें। ठीक है, सिवाय उस शख्स, यहां पर भी शर्त लिख लें, यहां पर शर्त क्या है, सिवाय उस शख्स के कि जिससे बात करने से आपका अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक के बेहतर हो जाने के की उम्मीद हो। ठीक है, तो किसी ऐसे शख्स से बात करना कि जिससे ऐसी राय मिलने की उम्मीद हो कि जिस राय पर अमल करने से आपका अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक बेहतर बन जाएगा। लेकिन औरतें करती क्या है, वो इस नीयत से बात नहीं करती, जैसे अम्मी से बात करेंगी या बहन से बात करेंगी या सहेली से बात करेंगी, वो इस नीयत से, हत्ता कि इवन शेख से भी बात करेंगी तो इस नीयत से बात नहीं करेंगी कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ ताल्लुक बेहतर बन जाए, मैं इसलिए बात कर रही हूं अपनी अम्मी से। बल्कि वो किस लिए बात करती हैं, आप बताएं जल्दी से, क्यों बात करती हैं ज्यादातर औरतें? या ये कि दूसरी नीयत क्या होती है, एक नीयत तो ये हो गई ना कि भाई मेरा ताल्लुक जो है वो अच्छा हो जाए मेरे मेरे हस्बैंड के साथ। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? टू कंप्लेन। ठीक है, एग्जैक्टली, शिकायत करने के लिए, जिसको के ये कंप्लेन करना तो बहुत बुरा लफ्ज लगता है ना, ये तो शिकायत करती रहती है तो बहुत बुरा लगता है, तो फिर अच्छा लफ्ज के लिए क्या इस्तेमाल करती है, दिल हल्का करने के। ठीक है ना, दिल हल्का करने के लिए करती हूँ, यानी शिकायत को एक अच्छा लफ्ज दे दिया, जैसे झूठ को बहाना है ना। अब झूठ का लफ्ज के साथ थोड़ी सी कराहियत होती थी तो उसको कह दिया बहाना बना दिया, उसी तरीके से कंप्लेन के लफ्ज के साथ जो है वो कराहियत होती है तो उसको जो है वो अच्छा पजामा पहनाने के लिए कह दिया कि दिल हल्का कर रही हूं मैं तो सिर्फ। भाई क्यों दिल हल्का कर रही हो, तुम्हारे जो ताल्लुकात खराब होंगे तो उससे तुम्हारा दिल जो है वो हल्का होगा या भारी हो जाएगा मजीद, ठीक है। और ये भी दो उन्होंने लिखा कि खुद को सही साबित करने के लिए, अब पता नहीं खाविन के सामने तो खुद को सही साबित कर नहीं सकी, अब अम्मा के सामने खुद को सही साबित करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, बस कुछ नहीं, दिल को तस्कीन हो जाएगी कि अम्मा ने तो कम से कम मुझे सपोर्ट कर दिया ना, तो भाई इस तस्कीन का आपको क्या फायदा होगा जब आपका घर खराब हो रहा है उसकी वजह से, सिंपैथी हासिल करने के लिए, भाई सिंपैथी हासिल करना कि कोई मुझे रीअश्योर कर दे कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। तो अब अम्मा भी अगर हमसे भी बढ़ करके होती हैं इल्म के बगैर, राइट, ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इल्म के बगैर, तो फिर अम्मा जो है वो और मामले को खराब करवा देती हैं, और इसी हाँ तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और तुम जरा जरा स्टैंड ले लो, और स्टैंड ले लो, और जरा बिल्कुल भी जो है वो झुकने की जरूरत नहीं है, गलती तस्लीम करने की तो सोचना भी नहीं तुम, वरना तो उसको आदत हो जाएगी अपनी बात मनवाने की, इस किस्म के मशवरे दे रही होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस वजह से मशवरा क्या है, टॉक टू योर हस्बैंड नॉट अबाउट हिम टू द पीपल, एंड पीपल इंक्लूड्स मदर सिस्टर फ्रेंड्स, ठीक है। शेख अगर कोई ऐसा है ना जो कि आपको खाली ये मशवरा दे कि खाविंद के साथ अच्छा ताल्लुक कैसे बनाने, तब उस शेख से बात कर, ठीक है ना। और अगर आप जो है वो दिल हल्का करने की कोशिश कर रही हैं तो वो आपको डांट दे, ठीक है, आपको समझा दे कि ये आप नहीं करें ये वाला काम, ये कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड जो है ना इसको आप खत्म करें। बेशक पहली दफा में आपको ना डांटे लेकिन तीसरी दफा में तो कम से कम आपको जरूर से डांटे, ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी दफा में तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना कि कंप्लेन कर रही है लेकिन सुन लो भाई, क्योंकि अगर हम भी नहीं सुनेंगे तो फिर शैतानी की किसी ना किसी शैतान के पास जाएगी, ठीक है। तो पहली दूसरी दफा नहीं डांटते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूसली ये काम कर रही होती है ना तो उसको भी सब किस्म की डांट की जरूरत होती है कि तुम ये क्या कर रही हो भाई, अपनी गलती को सीखने की कोशिश करो, अपनी गलती की इसलाह की कोशिश करो, बजाय इसके कि जो है वो हर वक्त सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करी चली जा रही है और जो है वो अपना दिल हल्के करने की कोशिश करी जा रही है और बस जो है वो शौहर की बुराइयां करी चली जा रही है। भाई सीखने की नीयत से करो कि तुम क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। तो शेख जो है वो खाविंद के साथ जोड़ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली शेख को आजकल यही करना पड़ रहा होता है, लेकिन असल काम क्या होता है, अल्लाह से जोड़ना, ठीक है, कि भाई खाविंद तुम्हारा जो है तो ना तो तुम उसको ठीक कर सकती हो ना जो है वो शेख साहब उसको ठीक कर सकते हैं, शेख साहब के पास कोई ऐसा वजीफा कोई ऐसा जादू मंत्र कोई थोड़ी होता है कि वो पढ़ के फूंक देंगे तुम्हारा खावन जो है वो ठीक हो जाएगा तुम्हारे साथ, नहीं होता कोई ऐसा वजीफा, अल्लाह ताला के पास वजीफे नहीं होते, अल्लाह ताला के पास मुकम्मल ताकत होती है, तो शेख फिर अल्लाह की तरफ भेजते हैं, अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो अल्लाह से जोड़ो, यानी अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगो और अल्लाह ताला से फिर मदद मांगो, ठीक है। शैतान जाहिर है मना करता है, अल्लाह ताला से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, खुद ही जो है मजा चखाने की कोशिश करो, खुद ही अपना जो है ना मामला अपने जोरे बाजू से हल करने की कोशिश करो, ये शैतान का काम होता है। तो टॉक टू योर हस्बैंड नॉट अबाउट हिम, नॉट अबाउट हिम टू द पीपल, कि औरत खाविंद से बात करे लेकिन खाविंद के बारे में लोगों से बात मत करे, ना रहम करे हमारे जो हालात चल रहे हैं, तो बीच मजलिस में बैठ करके इवन दूसरी औरतें जो कि कोई ताल्लुक नहीं है उनका आपके साथ, उनके सामने बैठ करके खाविंद की बुराइयां शुरू हो रही होती हैं, ये तो अनफॉर्चुनेटली ये हाल है इस वक्त, ठीक है ना। यानी जब आप ये काम कर रही होती है ना मजलिस में बैठ करके अपने खाविंद की बुराइयां कर रही होती हैं, तो ये इवन उससे ज्यादा बुरा तो खैर नहीं होता है कि बच्चों के सामने खावन से लड़ रही होती है, ठीक है, बिकॉज वो तो सबसे वर्स्ट चीज होती है, क्योंकि उससे तो आपके बच्चे ही जो है ना फिर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मजलिस में बैठ करके जो खाविन की बुराइयां कर रही होती हैं तो उससे क्या हो रहा होता है, खाविंद को तो वो औरतें जानती भी नहीं, या अगर जानती भी है तो क्या कर लेंगी भाई, वो असल में वो औरतें आपसे नफरत कर रही होती हैं और आपके ऊपर हंस रही होती हैं, जो मजलिस में बैठ करके दूसरी औरतों के सामने अपने शौहर की बुराई करना शुरू हो जाती है ना, वो ऊपर से शायद आपको थपकी दे दें, ऊपर से शायद आपकी हां में हां मिला रही हूं, लेकिन अंदर वो आपके ऊपर हंस रही होती हैं और आपसे जो है वो यानी आपको नफरत कर रही होती है, मतलब ये कि आप घटिया समझ रही होती है। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए तैयार है, गो गो राइट अहेड, गो राइट अहेड, करें जो इस तरह की हरकतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग कर रहे हैं, क्लासों में सुनते भी हैं, पहली दफा तो हम इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, कई दफा इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे ही यानी बहरे गूंगे बन करके क्लास में बैठे होते हैं कि कुछ अंदर दाखिल नहीं हो रहा होता, वही सन होना शुरू हो जाता है, तो ना हमारी वालदा मरहूमा फरमाया करती है, सन हो जाता है दिमाग, सुन हो जाता है या सन हो जाता है, और कान के अंदर दाखिल ही नहीं हो रही होती है सारी बात, तो करने पर आती हैं, तो उस वक्त ऐसे जैसे कि कोई एक क्लास भी नहीं सुनी कभी उन्होंने। ऐसी मफलूज हो जाना क्यों भाई, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो कि बात को फिर दिमाग में उतार भी दे और मौके के ऊपर याद भी करवा दे। ठीक है, हमने अल्लाह की कदर नहीं करी ना, मा कदर अल्लाह हक्का कदरी, हमने अल्लाह की कदर नहीं करी, इस वजह से अल्लाह ताला हमें ऐसा अंधा बहरा और गूंगा बना देता है, गूंगा इन द सेंस कि कोई अच्छी बात जुबान से नहीं निकल रही होती है, ऐसा अंधा और बहरा अल्लाह ताला बना देता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालांकि क्लास भी ले रही है, जो नहीं ले रहा उसका क्या हाल होता होगा, लेकिन जो ले रहा है उसको क्यों नहीं बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी औरतें ये गलती करती हैं कि खाविंद की कोई बात है तो कभी उसकी बहन को बता देंगी, यानी खाविंद की बहन को बता देंगी, कभी उसकी वालदा के सामने यानी अपनी वालदा के सामने या उसकी वालदा के सामने करेंगी, कभी अपनी वालदा के सामने कर देंगी, कभी अपनी दोस्त के सामने कर देंगी, और कभी अपनी पड़ोसन के सामने कर देंगी, और कभी बड़े भरी मजलिस में बैठ करके करेंगी, भरी मजलिस में बैठ के करेंगे, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, अल्हम्दुलिल्लाह हम पर्देदार खवातीन की मजलिस में जाके नहीं बैठते, लेकिन हमारे घर वाले तो बैठते हैं ना, वो बताते हैं फिर ये हरकत हो रही है आपकी, मुरीदाएं सो कॉल्ड हैं अल्लाह को पाने के लिए जो आई होती है ना, वो ये हाल है लोगों का। ठीक है, वो खैर कहती नहीं है इस तरीके से, लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि भाई आप किस किस्म की जो है वो सालिका हैं, किस किस्म की तालिबा हैं, किस किस्म की आलिम आलिमा हैं, कि इतनी सी बात भी आपने जो है वो सुन करके नहीं दी, तो हमारा इसमें क्या नुकसान है, नुकसान सारा का सारा आपका है, हुमा अलैना इल्ला बला, हमारा काम तो जो है वो पहुंचा देना था बात को, तो ये बहुत खतरनाक रवैया है, इसलिए शौहर की बात शौहर से ही करनी चाहिए, दूसरे लोगों से नहीं करनी चाहिए, दूसरों से बात करती हैं तो दूसरे लोग उल्टे सीधे मशवरे दे देते हैं, और इससे मियाँ बीवी का ताल्लुक मजीद खराब हो जाता है, इसमें मजीद का लफ्ज भी ऐड कर, मजीद खराब हो जाता है। करने से पहले उन्होंने मैसेज लिखा है यहाँ पर कि करने से पहले सोच लें कि अपना बेटा भी किसी का शौहर बनेगा, ठीक है, और फिर बहू ने अगर बेटे की बुराई की तो कैसी तकलीफ होगी, बेशक ऐसा ही है, ठीक है ना, यानी बहू की बुराइयां करती हैं या शौहर की बुराइयां करती हैं ये भूल जाती हैं कि उनके घर में भी एक बेटा है भाई, और उसकी भी उन्होंने शादी करनी है या उसने खुद ही अपनी शादी करनी है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा, ये नहीं सोचती, क्यों नहीं सोचती भाई, अच्छी अकल पे पर्दा पड़ गया। ठीक है, एम्पथी को जो है ना उधर एक्सटेंड करने की जरूरत है, व्हाट इफ आई एम इन देयर इन देयर शूज, या व्हाट इफ आई एम इन हर शूज, व्हाट इफ आई एम इन हिज शूज, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होगा फिर, किसी ने बड़ा अच्छा कहीं पे लिखा था कि मेरी गलती मुझे ही बताओ क्योंकि मैंने ही उसकी इसलाह करनी है, किसी दूसरे ने मेरी गलती की इसलाह नहीं करनी, ठीक है, तो अपनी गलतियां बताएं ना लोगों को जिन्होंने आपकी इसलाह करनी है। अगर शेख साहब को बता रहे हैं तो अपनी गलती बताएं, नहीं पता चल रहा तो इस नीयत से बात करें ताकि वो आपकी गलती आपको बताएं ताकि आप उसकी इसलाह कर सकें, ठीक है ना। तो खावन की बात दूसरे लोगों से ना करें, ठीक है जी। कोई और सवाल, कोई कमेंट हो तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है ये काबिल कबूल बने, लेकिन चूंकि क्लास का टाइम 15 मिनट ओवर हो चुका है तो हम यहाँ पे रुकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बाकी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला बात की समझ हमर की तौफीक अता फरमाए। बाखर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।